के अंदर हाहाकार मच गया। वे बंदर कांपने लग गए। नानाद्यमाना भयशल्य विद्धा, और वो बहुत जोर जोर से नाद करने लगे, चीखने लगे। और वे बिचारे बानर कहां जाए, दौड़े दौड़े सीधे राम जी की शरण में गए। और राम जी की शरण में जाकर राम जी महाराज ने कहा, कोई बात नहीं, अब तुम मेरे पास आ जाओ। अब राम जी ने अपने हाथ में धनुष लिया, धनुष लेकर के और जो है वो युद्ध करने के लिए रवाना होने लगे। तो लक्ष्मण जी ने उनसे कहा, ये महाराज इसके साथ मुझे युद्ध करने दीजिए, मेरा मन हो रहा है युद्ध करने का। उवाच रामम परमार्थ युक्तम, महाराज आप मुझे भेजिए। राम जी ने कहा, अच्छी बात है, देखो लक्ष्मण युद्ध करो, लेकिन ये रावण बड़ा बलवान है, इसलिए इसके साथ में तुम बड़े सावधानी से युद्ध करना। देखो युद्ध के अंदर शत्रु कहां कमजोर है उधर तुम ध्यान देना, अपनी कमजोरी शत्रु को बिल्कुल मत बताना। इसलिए तुम अपनी भी रक्षा करना, शस्त्र की भी रक्षा करना, और शत्रु की कमजोरी को तुम देखते रहना। इस प्रकार से राम जी के चरणों में अभिवादन करके लक्ष्मण जी महाराज रावण से युद्ध करने के लिए उसके सामने चले गए। हनुमान जी ने देखा कि रावण तो बढ़ता चला जा रहा है, इधर ये लक्ष्मण जी भी आ रहे हैं। हनुमान जी के मन में जोश आया। हनुमान जी महाराज जहां से थे वहीं से ही हनुमान जी उछल करके आए और आकर के और अपने रथम तस्य समासाद्य, उसके रथ को पकड़ के हनुमान जी ने उठा लिया। और उठा करके हनुमान जी बोले, तू तो अपने को देवताओं दानवों गंधर्वों यक्षों राक्षसों से अवध्य मानता था ना, बंदरों से तो अवध्य नहीं है, हम बंदरी आज तेरे काम आएंगे। उठा करके हनुमान जी ने पीछे फेंक दिया और वो सब उसके घोड़े सर रथी सारथी सब उसके पूरे हो गए। और वो रथ से कूद करके रावण बाहर आया। बाहर आकर के रावण कहने लगा, अरे हनुमान तू तो हमारे लंका को जलाने वाला था, तू ही आज हमने तेरे प्राण बचाए, तू ही आज हमारे प्राण लेने के लिए आया है। रावण ने कहा कि वाह महाराज, आज आपको आपके प्राण, आज आप मेरे प्राण लेने आए हैं। आपके बेटे अक्षय कुमार को जब हमने मारा था उस समय आपको बड़ी दया आई थी, अब आप हम आपको बताते हैं। हनुमान जी महाराज ने एक ताल ठोक करके और उछल करके जोर से जाकर उसके छाती में लात मारी। छाती में लात मारने से वो चक्कर खाया, चक्कर खा करके और वो नीचे गिरा। नीचे गिर के और देवताओं ने कहा, वाह बानर वाह बानर, रावण को जिसने चक्कर खिला दिया, वाह बानर, बड़ी प्रशंसा की। और वो रावण चक्कर खा करके गिर गया। थोड़ी देर बाद उसको होश आया। होश आने पर रावण ने कहा, अरे ओ बानर, तुम्हारा तो भाई लात मेरी छाती में लगी, तुमको बहुत बहुत हम धन्यवाद देते हैं, तुम्हारे में बड़ा बल है, बड़ा पराक्रम है। रावण ने कहा कि क्या, हनुमान जी ने कहा कि रावण धिक्कार मेरे बल को, मेरी लात तेरी छाती में पड़ जाए तो सांस लेवे, मेरे लात के गिरते ही तेरा सांस निकल जाना चाहिए था, मेरे पास कोई बल नहीं रहा। इस प्रकार से हनुमान जी महाराज फिर क्रुद्ध हुए और क्रुद्ध होकर के उसके और हनुमान बक्षसी ब्यूडे संत चालक पुनः फिर उससे युद्ध करने लगे। इस समय में पात्या मास वेगे न वानरो रसी, अब उस रावण ने क्या किया कि हनुमान जी की छाती में मुक्का मारा। छाती में मुक्का मारने से हनुमान जी घायल होकर के नीचे गिर गए। तब रावण जो है वो खड़ा हुआ बाणों को लेकर के, और नील सामने आया था। अब नील के ऊपर उसने बाण लगाया। इतने में हनुमान जी वापस ठीक हो गए और कहने लगे, ए मेरे साथ युद्ध करता हुआ, मेरे से मुंह मोड़ करके दूसरे के साथ तो युद्ध करता है, आओ मेरी तरफ आ। ऐसा कहकर के हनुमान जी ने देखा कि जो इधर निशाना लगा रहा है, ये निशाना इसका, देखो निशाना लगता है ना उस समय दूसरी आवाज आती, निशाना पूरा नहीं लगता। तो नीलेन सह संयुक्तम, नील के साथ जब वो युद्ध कर रहा था रावण, तो हनुमान जी ने अपनी ओर उसका इशारा किया, तो अब उसका भाई रावण का निशाना था वो चूक गया और नील के हाथ में जो पर्वत था वो पर्वत टूट गया। और इधर हनुमान जी महाराज उसको जो है युद्ध के लिए ललकारे, इधर नील का, देख मेरे साथ युद्ध करता है, हनुमान के साथ क्यों करता है। तब वो भी देखेगा अब इसके साथ युद्ध करूं कि इसके साथ युद्ध करूं। तो इतने में नील था उसके उसके माथे पर चढ़ गया और माथे पर चढ़ करके और फिर भग करके वृक्ष को उखाड़ लाया, वृक्ष को उखाड़ करके रावण के ऊपर फेंका। तो भाई रस्वम कृता तो रूपम ध्वजाग्रे निपात है, तब उस समय वृक्ष को तो उसने तोड़ दिया। वृक्ष को तोड़ देने के बाद नील थोड़ा छोटा बन गया, छोटा बन करके उसके रथ के ऊपर बैठ गया। भाई उनके पास तत्काल दूसरे रथ आते थे, एक रथ पड़ा दूसरा रथ तैयार, उस रथ के ऊपर आके और वो नील बैठ गया। अब वो रावण बाण लगाए तो उसके बाण के ऊपर आकर बैठ जाए और वो धनुष पर बैठ जाए, उसका बाण लेके तोड़ दे, उसका धनुष लेके तोड़ दे और वो फिर जो झुंझलाए तो पीछे चला जाए, वो पीछे जाए तो वो आगे आ जाए। इस प्रकार से उसको चारों तरफ घुमाते रहे, ध्वजाग्रे धनुष्चाग्रे किरीटाग्रे मुकुट पर जाकर के बैठ जाए। हनुमान और लक्ष्मण ये सब देख करके बड़ा आश्चर्य करने लगे कि वाह नील वाह नील वाह नील, तुमने तो रावण को आज खूब घुमाया है, खूब घुमाया है। सारे के सारे बांदर राज प्रसन्न हो रहे हैं कि देखो नील ने, अब नील क्या करे, वो निशाना ही लगावे तो नील यहाँ आंख के ऊपर प्रहार कर दे और कभी उसकी खोपड़ी पकड़ करके यूं कर दे। ऐसे नील ने इस प्रकार से जब उसको परेशान किया तब रावण कहने लगा, हे बानर तू मेरे साथ बहुत चंचलता करता है, तुझे पता नहीं है मैं लंका का राजा हूँ, राजा के साथ ऐसा युद्ध नहीं होता है। इस प्रकार से रावण बड़ा क्रुद्ध होकर के बाण लेकर के और वो नील के पीछे दौड़ा और नील के छाती में उसने बाण लगाया। नील उस समय घायल होकर के और गिर गया और भाई उसने भी कौन सा बाण लगाया, अग्नि बाण। देखो अग्नि बाण लगाया और किसके लगाया, नील के जो अग्नि का ही बेटा था। तो भाई उसके पिता ने उस बाण से उसकी रक्षा की और वो मरा नहीं, लेकिन उसको ऐसा लगा कि मानो ये मर गया है। और फिर वो रावण लक्ष्मण की ओर दौड़ा, लक्ष्मण की तरफ आया, तब लक्ष्मण ने बाण लेकर कहा, अवैहि मामत्य निशाचरेन्द्र आओ राक्षस राज आओ, तुम बांदरों के साथ क्यों लड़ाई करो, करो तो मेरे साथ करो। राक्षस ने कहा, अच्छा तुम छोटे भाई हो कि बड़े भाई हो, यदि छोटे भाई हो तो मैं तुमको छोड़ दूं, तुम यदि बड़े भाई हो तो तुम्हारे साथ भी दो बात करूं। लक्ष्मण ने कहा कि किससे बात करते हो, बाणों से बात करूं, बाण क्या बोलते हैं। ऐसा कह करके हनुमान जी महाराज ने लक्ष्मण जी ने बाण छोड़ा। देख रावण योद्धा लोग बाणी से बात नहीं करते, वो बाण से बात करते हैं, तुम बहुत बड़े पराक्रमी हो मैं जान गया हूं, क्योंकि तुम हमको अकेला करके सीता को हर के लाए थे, सीता हरण के अब बहुत बड़ा तुमने धर्म कमाया, पुण्य कमाया, वाह वाह रावण बहुत अच्छा रावण। इस प्रकार से भाई रावण को रावण पर कुपित होकर के लक्ष्मण जी ने बाण मारे, रावण ने भी 7 बाण मारे, लक्ष्मण जी ने उसके सारे बाणों को काट दिया। और फिर रावण को बड़ा भयंकर क्रोध आया और इधर लक्ष्मण जी महाराज भी खूब लड़ रहे थे, दोनों के इस युद्ध के अंदर बड़ा घमासान मच गया और लक्ष्मण बाण छोड़े तो राक्षस राज रावण काट दे, रावण बाण छोड़े तो भाई राक्षस राज ये लक्ष्मण है ये बाण काट दे। इससे रावण बड़ा पीड़ित हो गया और अंत में भाई रावण के पास में एक ब्रह्मा जी की दी हुई शक्ति थी, वो शक्ति सीधी लक्ष्मण के छाती में लगाई और उस शक्ति से छाती के यहाँ लगी, छाती से लगते ही लक्ष्मण जी घूम करके और वहां पर नीचे गिर गए। जब लक्ष्मण जी नीचे गिर गए उस समय रावण दौड़ा दौड़ा आया और आकर के और लक्ष्मण जी को उठाने लगा, लक्ष्मण जी को उठाने लगा तो लक्ष्मण जी ने अपना जो विष्णु स्वरूप का अंश था उसका स्मरण किया, स्मरण करने के बाद वो शक्ति उसके यहां से शरीर से निकल गई और लक्ष्मण जी वापिस स्वस्थ हो गए। इतने में हनुमान आदि सब आए और उन्होंने आकर के और रावण को चारों तरफ से घेर लिया। रावण तो आकर के लक्ष्मण जी को उठाना चाहता था, लक्ष्मण जी को जो है बचाया और रावण के ऊपर प्रहार किया, रावण ने उनके ऊपर फिर प्रहार किया। इस प्रकार से वायुपुत्र हनुमान जी महाराज, मम पृष्ठम समारुह्ये राक्षसम शास्तुमर्हसि, लक्ष्मण जी आइए आप स्वस्थ हो गए, मेरी मेरे पीठ के ऊपर बैठिए, कंधे पर बैठिए और फिर राक्षस राज रावण पर बाण लगाइए। हनुमान जी के पीठ के ऊपर बैठ करके अब जो है खूब बाण लगाने लगे। ठहर ठहर, तूने बहुत नालायकी की है, अब मैं तू मुझे इंद्र समझ करके, यमराज समझ करके मेरी तरफ आया लड़ाई करने के लिए, देख अब मैं मुझे मेरे बाण तुझे सब प्रकार की शिक्षा सिखा देते हैं, ऐसा करके और लक्ष्मण जी ने बाण लगाए। और लक्ष्मण जी के बाण लगने से अब उसके जो है घोड़े वगैरह वो तो सब समाप्त हुए और फिर वो पैद नीचे गिर गया। नीचे गिरने पर हनुमान जी महाराज आए, हनुमान जी महाराज ने आकर के उसको जो है छाती के अंदर बाण लगाए, छाती के अंदर मुक्के लगाए, रावण क्रोध से मूर्छित हो गया। और फिर उसके बाद राम जी महाराज वहीं थे, राम जी ने भी बाण लगाए तथा तस्या विसंक्रम्य रथम सचक्रम। राम जी ने जब बाण लगाए तब उसका तो सब ये हाथी घोड़े सब समाप्त हो गए। और अथेन्द्र शत्रुम तरसा जघाने, अब जो है रावण को जब इस प्रकार से राम जी ने रथ विहीन कर दिया और उसके पास कोई शस्त्र भी नहीं रहा, शस्त्र को भी काट दिया, रावण मन ही मन में बड़ा क्षुब्ध हुआ और उस समय में पृथ्वी चलायमान हो गई। तब राम जी महाराज ने वो एक बाण और लगाया तो उसका मुकुट था, वो मुकुट भी नीचे गिर गया, अब उसके पास कुछ भी चीज नहीं रही। रावण ने जब देखा कि अब मेरे पास कोई युद्ध की सामग्री नहीं रही, राम जी ने कहा, रावण तुम तो बहुत परिश्रम करते हो और अब देखो मेरे पास तुम्हें यमलोक में भेजने के अलावा कोई उपाय नहीं है, पर आज तुझे मैं नहीं मारूंगा, तुम जाओ, तुम मेरे इस बाण से मर सकते हो रावण, लेकिन लंका में जाओ, लंका में जाकर लंका की व्यवस्था करके आओ, तुम्हारे मरने के बाद लंका कैसे चले ये बात करके आओ, सब लोगों से अंतिम बार मिलकर के आओ और उन सबसे अंतिम बार मिलकर के उसके बाद मेरे से युद्ध करने आओ, चले जाओ यहाँ से, हमने तुमको प्राण दान दिया है। रावण नीचा मुख किया हुआ युद्ध भूमि से लंका के अंदर चला गया और वहां जाकर अपने महल में बैठ करके और लंबी लंबी सांस लेने लगा। इधर राम जी महाराज लक्ष्मण के साथ, हनुमान के साथ, दूसरों के साथ जब अपने बांदरी सेना में आए तब सारे बांदर बड़े प्रसन्न हुए, देवता लोग भी बड़े प्रसन्न हुए और सब सागर वगैरह सब बड़े प्रसन्न हो गए और बांदरों में भगवान की जय जयकार होने लगी। सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय, इस भावना से लिखी हुई श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड के प्रसंग में अपने लोग चल रहे हैं। वाल्मीकि रामायण में संपूर्ण सृष्टि का ज्ञान भरा हुआ है, कितने कितने प्रकार के शस्त्र होते हैं वाल्मीकि रामायण में मिलेगा, कितने प्रकार के वृक्ष होते हैं वाल्मीकि रामायण में मिलेगा, कितने रंग के फूल होते हैं वाल्मीकि रामायण में मिलेगा, प्रारब्धवाद और पुरुषार्थवाद में क्या अंतर है इसका समाधान वाल्मीकि रामायण में मिलेगा, धर्म अर्थ और काम इसमें किसकी मुख्यता है इसका उत्तर वाल्मीकि रामायण में मिलेगा, मनुष्य का शरीर का बाह्य लक्षण क्या होता है वाल्मीकि रामायण में मिलेगा, शुभ शकुन कौन से होते हैं और अशुभ शकुन कौन से होते हैं वाल्मीकि रामायण में मिलेगा, आदि काव्य होकर वाल्मीकि जी महाराज ने कितनी बड़ी ख्याति, कितना बड़ा ज्ञान और कितना एक अनुपम एक जगह साहित्य संग्रहित करके दिया है वाल्मीकि जी महाराज, वास्तव में हमारे लिए बड़े गौरव के पुरुष हुए हैं, महापुरुष हुए हैं। वाल्मीकि जी महाराज ने एक सबसे बड़ा अपने जीवन से सबको आश्वासन दिया कि भाई मेरे जैसा पापी तो आप में शायद ही कोई होगा। कितने कितने द्विजातियों को मार करके उनकी जनेऊ इकट्ठी की जाती थी, माने 72 मण जनेऊ थी मारी हुई। 72 मण से सोचो कि कितने द्विजातियों का वध किया होगा, कितना कितना उन्होंने अन्याय किया था। परंतु वे वाल्मीकि जी महाराज इतने विलक्षण निकले कि उनके पाप कोई दिखाई नहीं देते। वाल्मीकि जी महाराज ने यदि भगवान का साक्षात्कार न किया होता या ये लीलाएं उन्होंने भगवान के द्वारा होने वाली लीलाओं का यदि साक्षात्कार नहीं किया होता तो ये वाल्मीकि रामायण लिखी नहीं जा सकती थी। जहां कहीं वाल्मीकि जी महाराज ने कलम उठाई है उसको मानो वो सामने देख रहे और लिख रहे, देख रहे और लिख रहे, इस प्रकार से उठाई है। कवि की अपना अपनी कुछ कल्पना हो सकती है, ये बात तो हम कब सोचते हैं कि जब हम वाल्मीकि रामायण को नहीं पढ़ते हैं। बड़ा भाग्य है, बड़ी भगवान की कृपा है, संत महापुरुषों की कोई गुप्त रूप से छिपी हुई कृपा प्रकट हुई है कि इस कलिकाल में अपने को वाल्मीकि रामायण सुनने को मिलती है। सब रामायण का आधार वाल्मीकि रामायण। और उसके बाद ये आदि काव्य, और उसके बाद ये लव और कुश ने सीखा है और भगवान श्री राम ने इसको सुना है। सुनने के लिए कहीं तपोवन में नहीं गए, अपने राजमहल में बैठ करके सुना है, क्योंकि भगवान ये बताना चाहते हैं कि भाई मेरी लीलाओं को सुनो, जो जहां है वहीं से वो सुनने का पूरा अधिकारी है। इसलिए वाल्मीकि रामायण वास्तव में अपने लिए एक अनुपम कृपा प्रसाद है। तो आइए आप हम सभी अपने मन से भगवान के साथ में लंका पहुंचते हैं, और जहां लंका में पहुंचने के बाद भगवान के साथ बैठ करके युद्ध भी करते हैं। युद्ध की बातें सुनने में बड़ी अच्छी लगती हैं, परंतु युद्ध है ये, करने में और युद्ध भूमि में उपस्थित होने में बड़ा कठिन काम होता है। कल रावण भगवान के सामने आया और भगवान ने उसको रथ विहीन कर दिया, शस्त्र विहीन कर दिया, धनुष वगैरह सब तोड़ दिए। भगवान ने कहा कि जाओ लंकेश, चले जाओ लंका में, छिपा लो अपना मुंह, कर लो बात तुम अपने संबंधियों से, मिलियाओ तुम लंका में अपने आवश्यक प्रजाजनों से, और फिर तुम मेरे से युद्ध करने आना, मेरे सामने तुम बच नहीं सकते। रावण लंका में आ गया। बानर लोग तो बड़े हर्षित हुए और सारे राक्षस मुंह लटकाए हुए लंका में बैठे हैं। लंका में आने के बाद रावण का अभिमान चूर चूर हो गया। जो रावण अपने सभा के अंदर बैठकर बड़ी बड़ी डींग मारता था, वो रावण आज चुपचाप चुपचाप अपनी सभा में बैठा है। भगवान राम के तीक्ष्ण बाणों ने आज रावण को जब परास्त किया तो रावण के मन में आया कि इससे तो अच्छा मर जाना ठीक था। बड़े बड़े रावण के चाटुकार माने चापलूसी करने वाले लोग, महाराज की जय हो, आप में अनुपम बल है, ये एक बार तो हार जीत तो होती रहती है, आप दोबारा शक्ति संचित कीजिए, ऐसी ऐसी बातें करने वाले बहुत लोग आ रहे थे। लेकिन रावण का वहां चेहरा उतरा हुआ है और वो बार बार राम के बाण के घाव को संभालता है। रावण कहता है कि मैं मान गया हूं कि राम एक बहुत बड़ा वीर है। ऊंचे आसन पर बैठा हुआ रावण अपने राक्षसों के बीच में बोलता है, हे राक्षसों, मैंने बहुत बड़ी तपस्या करके जो वरदान प्राप्त किया था, आज राम के बाण के सामने रावण की तपस्या एकदम व्यर्थ चली गई। राम है कि ये इंद्र है कुछ पता नहीं चला। ब्रह्मा जी ने कितना मुझे आशीर्वाद दिया था, लेकिन मैंने भी ब्रह्मा से एक ही बात कही थी कि मुझे मनुष्यों से और बानरों से कोई भय नहीं है। मैंने देवताओं से, दानवों से, गंधर्वों से, यक्षों से, राक्षसों से और पिशाचों से अभय मांगा, बानरों से अभय नहीं मांगा, उसका फल मुझे मिल रहा है। एक बार मुझे इक्ष्वाकु वंश का एक राजा अनरण्य मिला था और उस अनरण्य को मैंने परास्त किया था। उस अनरण्य ने कहा था कि रावण तेरे अत्याचार के कारण देखना मेरे ही कुल में एक विलक्षण पुरुष होगा जिसके द्वारा तू मारा जाएगा। आज उस अनरण्य की बात सच्ची सच्ची मालूम दे रही है। मुझे किसी ने भी नहीं कहा कि रावण तुम बानर और मनुष्य से भी अभय मांग लो तो मैं अभय मांग लेता, ब्रह्मा जी से ब्रह्मा जी को अभय देना पड़ता। लेकिन क्या बताऊं, मुझे तो मेरे अभिमान, मेरे तपस्या पर बड़ा अभिमान था। मुझे वेदवती ने श्राप दिया, मुझे उमा ने श्राप दिया, मुझे नंदीश्वर ने श्राप दिया, मुझे अच्छी अच्छी स्त्रियों का, सती साध्वी स्त्रियों का श्राप लगा हुआ था, उसका फल आज मैं भोग रहा हूं। मुझे तो लगता है कि वो वेदवती ही सीता बनकर आई है और मेरा विनाश करके यहां से चली जाएगी। दिखने में तो वो कुछ नहीं करती है, केवल अशोक वाटिका के नीचे बैठी हुई दिखती है, लेकिन सीता के आने के बाद से मेरे लंका में बहुत उत्पात होने लगे। मैंने ऋषि मुनियों की बात का आदर नहीं किया और बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोगों का मैंने तिरस्कार किया जिसका फल मुझे प्राप्त हो रहा है। चलो राक्षसों, आप लोग अब लंका की रक्षा करो, अंदर से और बाहर से आप लोग तैयार रहो और देव दानवों का घमंड दूर करने वाला मेरा छोटा भाई कुंभकर्ण अभी नींद में सोया हुआ है, उसको जगाओ, उसको बताओ कि प्रहस्त मारा गया, उसको बताओ कि कई बड़े बड़े राक्षस मारे गए, बेचारे को क्या पता वो नींद में पड़ा हुआ है। आप लोग ठीक ढंग से यत्न करो और कई लोग जाकर के कुंभकर्ण को जगाओ, मुझ पर आपत्ति आई हुई है और वो आराम से सो रहा है, देखो ये भी कोई मेरे भाग्य की बात है। ये कुंभकर्ण कभी 2 महीने सोता है, कभी 7 महीने सोता है, कभी 10 महीने सोता है, कभी 8 महीने सोता है, इसको 6 महीने के बाद जगाने से जगेगा, उसके बाद तो वो मर जाए तब जगेगा। कभी कभी तो ये 9 महीने तक सोता रहता है। अभी अब की बार ये 9 महीने हो गया सोए हुए, उसको जाकर आप लोग जगाओ। यदि कुंभकर्ण जग गया तो ये दोनों राजपुत्रियां ठहर नहीं सकेंगी, बांदरों की सेना ठहर नहीं सकेगी। इस मूर्ख कुंभकर्ण को भी कब नींद आ रही है? ये ऐसे समय में सोया है जिस समय में मुझ पर आपत्ति आ रही है। राम ने अपने तर्कस में बाणों के माध्यम से लंकावासियों के प्राण इकट्ठे कर लिए और कुंभकर्ण आराम से सो रहा है। ऐसे घोर कष्ट के समय में भी यदि कुंभकर्ण नहीं जगेगा तो फिर आगे मेरे कब काम आएगा? इस प्रकार से राक्षसों को ये बात सुनाई और वे राक्षस लोग जहां कुंभकर्ण अपनी गुफा में पड़ा था वहां पर वे लोग गए। अपने साथ में वे हजारों हजारों मदिरा के घड़े लेकर गए, मांस और खून के घड़े भर भर के ले गए। कितने ही वजन के अंदर वो सुगंधित मालाएं लेकर के गए और जब वे उस गुफा में प्रवेश करने लगे, चार कोस में वो गुफा थी और उस गुफा के अंदर जब वे प्रवेश किए तो कुंभकर्ण की खर्राटे की आवाज आ रही थी और वो जो खर्राटे में श्वास छोड़ता था तो जो ही मेले गुल के बिल के वहां पहुंचे गुफा के दरवाजे पर तो श्वास के छोड़ने से वो वहीं गिर गए। और जब वो ऐसे वापस श्वास खींचता था तो पड़े हुए लोग वापस उठ जाते थे। ऐसे गिरना पड़ना इस प्रकार से होता रहा। उन्होंने देखा कि ऐसे तो पार पड़ेंगे नहीं। तब वे बड़ी मुश्किल से एक एक का सहारा लेकर वहां खड़े हुए और खड़े होकर श्वास का जो वेग आ रहा था उससे थोड़े तिरछे होकर के और वो गुफा के अंदर गुफा की दीवार को पकड़ते सहारा लेते लेते अंदर गए। अंदर जाकर के देखते कि विशाल का ये कुंभकर्ण आराम से सोया हुआ पड़ा है और कुंभकर्ण के श्वास लेने से ये उसके शरीर के जो ये बाल है ये बस उठते हैं पड़ते हैं उठते हैं पड़ते हैं। बड़ा वो विलक्षण शरीर वाला और उसकी नाक है, वो नाक ऐसे लगे जैसे कोई पाताल है। बड़ी बड़ी उसकी नाक है, उस नाक में से जब हवा निकलती है और खींचती है ऐसा लगता है कोई बहुत बड़ा यंत्र अंदर चल रहा है। उसके पास उसके शरीर के ऊपर खून, उसके खुद के शरीर के खून की और चर्बी की सारी गुफा के अंदर बड़ी दुर्गंध आ रही है। खून की और चर्बी की यही पीता था ये खाता था, उसकी अंदर से दुर्गंध सारी गुफा के अंदर आ रही है। उसकी भुजाओं में बहुत मोटे मोटे आभूषण पहना रखे हैं और वो मुकुट लगा करके सोया था तो मुकुट है जैसे उसके सिर पर है। ऐसे कुंभकर्ण को देखा और मेरु पर्वत के समान एक विशाल काय शरीर को देख करके उन लोगों ने सोचा कि अपन जगा तो रहे लेकिन उठते ही कुछ मांगेगा खाने के लिए तो क्या देंगे। तो उस समय हजारों की संख्या में भैंसे ले आए, हजारों की संख्या में सुअर ले आए और हजारों की संख्या में वहां पर और पशुओं को मार मार के सामान रख दिया और खून के घड़े के घड़े भर दिए, बड़े बड़े मांस के घड़े भर करके रख दिए। 2000 घड़े तो केवल मदिरा के लाकर रखे थे और वो घड़े भी भाई छोटे छोटे उद्राम सर की मटकियां नहीं, बहुत बड़ी बड़ी मटकियां हैं, मोकल सर की मटकियां, इतनी बड़ी बड़ी मटकियां, बहुत मोटे मोटे जो घड़े जिसको कुंभ बोलते हैं वो 2000 की संख्या में मदिरा के लाकर वहां रख दिए। और एक बहुत बड़ा चंदन का, कितने चंदन के पेड़ काट करके और चंदन का लेप किया, चंदन घिसा, चंदन किसके और उनके सारे शरीर के ऊपर लेप किया कि चंदन की ठंडक से क्या पता जग जाए। और नाक के यार यहाँ सब जगह खूब इत्र छिड़क दिया, इत्र छिड़क दिया ताकि सुगंधी से कुछ हो जाए जग जाए। धूप दीप तो बहुत मात्रा में वहां पर जगाए गए, धूप दीप का तो कुछ पता ही नहीं चला। फिर उन्होंने बड़े बड़े शंख लिए, शंख लेकर उसके कान के पास जोर जोर से बजाए। शंखों के बजाने पर भी उसको कुछ होश नहीं आया। फिर बहुत बड़े बड़े नगारे लिए और नगारा लेकर के उस कान के पास में जोर जोर से नगारा पीटने लगे। लेकिन ये भी उनका केवल व्यायाम हुआ, उसके तो कोई फर्क नहीं पड़ा। बड़ी बड़ी भेरियां बजाई गई और फिर सिंगों को पकड़ करके सिंहनाद किया गया। सिंहनाद, सिंह की दहाड़ बहुत जो है तेज।